नमस्ते दोस्तों, अस्तित्व फाउंडेशन बड़ौदा से नीला दीदी की कहानी नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक कहानी जिसका शीर्षक है भिखारिन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई है। काशी में एक अंध भिखारिन रहती थी। वह हरदम एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगती रहती। कुछ लोग उसे पैसे दे देते थे, कुछ लोग उसे खाना दे देते थे और उसका जीवन यूं ही चल रहा था। एक बार वह रोज की भांति बैठी हुई थी, तभी तक एक 6-7 साल का एक बच्चा एकदम रोता हुआ आया। वह रो रहा था और उसके साथ कोई भी नहीं था। भिखारिन ने उसे चुप करने की कोशिश की, पर वह चुप नहीं हुआ। उसने उसको गले लगाया, बहुत प्यार किया। काफी देर बाद बच्चा चुप हो गया, पर कोई उसे लेने नहीं आया। शाम हो गई। अब भिखारिन ने सोचा, मैं क्या करूं। वो बच्चे को लेके अपने घर ले गई। उसे बहुत प्यार से अपने बच्चे की तरह उसे पालने लगी। अब दोनों खुश थे, बच्चे को माँ मिल गई थी और भिखारिन को बच्चा मिल गया था। ऐसे करके 2-1 साल बीत गए। भिखारिन के पास एक हांडी भर के पैसे इकट्ठे हो गए थे। उसने उन पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़े सेठ के वहां जाने का सोचा। वहां गई और सेठ को बोला कि मेरे पैसा जमा कर दो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगी। सेठ ने बोला, अच्छी बात है। मुनिम जी को बोला, इसका नाम लिख लो और इसके पैसे ले लो। वापस आई वो। कुछ समय बाद बच्चा बीमार पड़ा। बहुत देखभाल करने पर भी बच्चे की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। भिखारिन को लगा कि अब तो डॉक्टर के पास ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, पर पैसे कहाँ से लाऊं? उसे याद आया वो पैसे सेठ के पास है। वो पैसे लेने सेठ के घर गई। पैसे मांगने पर सेठ तो एकदम अनजान होकर बोला, कौन से पैसे? मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है, यहाँ से चलती बनो। सेठ ने भिखारिन को अपमानित करके निकाल दिया। अब वह अंध भिखारिन बहुत रोते रोते घर आई। वो क्या कर सकती थी, किसको बताए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसने सोचा, मैं बच्चे को लेकर सेठ के घर जाती हूँ और वहाँ बाहर डेरा डाल के बैठती हूँ, फिर तो सेठ को मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। उसने वही किया। वह जाकर सेठ के घर के बाहर बैठ गई। दरवान के भगाने पर भी नहीं गई। तब सेठ खुद बाहर आए, पर जब उनकी नजर बच्चे पर पड़ी तो वे चौंक गए। ये तो उनका वही बेटा था जो कि 2-3 साल हुए मेले में खो गया था। उसके बेटे की जांघ के ऊपर एक निशान था। जब सेठ ने चेक किया तो पता चला निशान भी है। अब सेठ तो एकदम आकुल व्याकुल हो उठा कि उनका एक ही एक बेटा मिला तो सही, पर इस हालत में। ओ, उन्होंने जल्दी से बच्चे को उठाया और अंदर ले गए। इधर भिखारिन दुखी हो गई कि बच्चे को तो दवा के पैसे तो ना मिले, पर बच्चा भी हाथ से गया। वो बहुत रोती हुई, दुखी होती हुई घर चली गई। दुख में वह तड़प रही थी। उसे बुखार भी आ गया। इधर सेठ ने डॉक्टर को बुलाकर बच्चे का इलाज करवाया। बच्चा ठीक हुआ, पर जब वो होश में आया तो उसने देखा सब अनजान लोग, अनजान जगह और उसकी माँ कहीं नहीं दिखी। वह चिल्ला उठा, माँ माँ, और फिर बेहोश हो गया। अब सेठ को चिंता हुई। उन्हें समझ आई कि भिखारिन ही इसे बचा पाएगी। वे जल्दी से भिखारिन की झोंपड़ी में गए और उसे बोला, बहन तुम चलो, बच्चा तुमको याद कर रहा है और डॉक्टर बता रहा है कि वो तुमसे मिलने के बाद ही अच्छा हो पाएगा, तुम ही उसे बचा पाओगी, तुम आ जाओ। भिखारिन भी बुखार में तड़प रही थी। सेठ उसको अपने घर लिवा गए। वह बच्चे को सिर अपने गोद में लिए बैठी, धीरे धीरे सहलाने लगी। धीरे धीरे बच्चा होश में आया और उसने अपनी माँ को देखा। उसे शांति हुई। भिखारिन 10-15 दिन वहीं रुकी। तब तक बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। अब भिखारिन ने सेठ से घर जाने की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे वहीं रुक जाने का आग्रह किया, पर वही नहीं मानी। उसने अपने कपड़े की पोटली बांधी और अपने घर जाने के लिए निकलने लगी। तभी सेठ एक पैसे की पोटली लेकर आए और उसकी माफी मांगते हुए बोले, बहन मुझे माफ कर दो, तुम्हारा पैसे मैंने रख लिया था, अब मैं वही लौटा रहा हूँ। अब भिखारिन बोली, सेठ अब मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे तो मैंने वही बच्चे के लिए ही रखे थे, और जब बच्चा ही आपके पास है तो मैं पैसे का क्या करूँगी। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि वो इतने बड़े सेठ थे, फिर भी आज वो एक याचक थे और ये जो भिखारिन थी वो एक दाता थी। तो देखा दोस्तों, सिर्फ पैसे होने से कोई धनी नहीं बन जाता। जो धन है, जो कि संपत्ति है, वो अंदरूनी संपत्ति भी हो सकती है। एक भिखारिन भी इतनी बड़ी दाता हो सकती है।
इस ऑडियो को IVR पर पसंद कर इसे आगे भेजना चाहते हैं तो 5 दबाएं। इसका ऑडियो ID नंबर आपको SMS किया जाएगा और अगर आप इनेबल वाणी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पसंद किए गए ऑडियो को फॉरवर्ड करें।